بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب ہمارا خوش نصیب دوست۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 52، پانچواں باب، توحید۔ کہا کرتے تھے کہ منصب شہادت پر فائز ہونے کی پہلی شرط ساری مادیات اور دنیاوی تعلقات کو اپنے دل سے نکال باہر کر دینا ہے۔ ہمارے تمام شہدا پہلے مرحلے میں اپنے دلوں سے ہجرت سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے دلوں کو مشغول کر دینے والی چیزوں کو نکال پھینکنا، جو بارگاہ الہی کی طرف ہجرت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس مرحلے میں انسان ذات الہی اور کثرات عالم کے سوا ہر چیز کو اللہ کی ذات بے مثال الہی میں فنا ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور حق کے چمکتے ہوئے آفتاب کو اس دنیا، انسان اور کائنات کی ہر چیز پر، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، نور افشانی کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم شہید پرور قوم ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے مشکل مراحل طے کیے ہیں۔ انقلاب اسلامی کے آغاز سے لے کر اب تک ہم امام حسین علیہ السلام کے دامن کو تھام کر آگے بڑھے ہیں۔ ہم نے اسی راہ پر چلتے ہوئے تمام کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے اہل خانہ اور اصحاب کی پیروی کی تربیت حاصل کی ہے، اور یہ محاذ آئے دن ایک نئی کامیابی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ کل تک صرف ایران اسی راہ پر گامزن تھا، اور آج متعدد محاذ کھل چکے ہیں۔ آج سرزمین یمن میں انصار اللہ بھی امام حسین علیہ السلام کے اقتدا میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی۔ روس کے صدارتی محل کرملین میں نماز۔ ایک مرتبہ جنرل قاسم سلیمانی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے روس کے صدارتی محل کرملین گئے ہوئے تھے۔ صدر پیوٹن کے پہنچنے سے پہلے جب نماز کا وقت ہوا تھا، جنرل صاحب کھڑے ہوئے اور اذان و اقامت کہنا شروع کیا۔ آپ کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سب کی نظریں آپ پر تھیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ پوری زندگی میں نماز سے اتنی لذت کبھی نہیں ملی تھی۔ نماز کے بعد سجدہ گاہ پر پیشانی رکھ کر اپنے پروردگار سے کہہ رہے تھے، اے اللہ، یہ تیرا معجزہ ہے کہ ایک زمانے میں کرملین محل میں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، اور آج میں قاسم سلیمانی یہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں۔ سب سے اہم بات جس کی ہمیں پرچار کرنی چاہیے، آج جب ہمارے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری عائد ہے، تو اس دلیل کی بنیاد پر ہمیں ہر میدان میں اس ذمہ داری کو اپنے پورے دل و جان سے نبھانا چاہیے کہ آج اسلام کا حقیقی اور مجسم مصداق نظام جمہوریہ اسلامی ہے۔ کیسے کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام قرآن ناطق تھے؟ آج اسلام مجسم نظام جمہوریہ اسلامی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی۔ آپ نے جب اپنا سب کچھ قربان کیا اور اتنے عظیم لوگوں کی قربانی کی پیش کی، تو فرمایا، ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ اس کی اہمیت ہے، ہم سب اس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وردی ہم نے اس لیے پہنی ہے، اسی کے لیے میدانوں میں موجود رہتے ہیں۔ اب کون کیا کہہ رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے، ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، نہ آگے بڑھنا ہے اور نہ پیچھے رہ جانا ہے۔ اس چیز کی اہمیت ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کسی کو زیادہ چاہے یا کسی کو کم چاہے، لیکن اصول نہیں توڑنا چاہیے۔ کسی کی محبت اصول پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اثر انداز ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس شخص کا دیوانہ ہوں۔ شہری علاقوں میں جنگ کی حساسیت۔ جب جنگ شہری علاقوں تک پھیل گئی، تو کچھ سپاہی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے میں آپ کھڑے ہو کر سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر آپ کے شہر پر حملہ ہو جائے تو کیا آپ پسند کریں گے کہ سپاہی آپ کے گھروں میں داخل ہو جائیں؟ اس لیے اب دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، یہاں تک کہ غلطی سے بھی کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو اسے واپس اپنی جگہ رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لے رہا ہے، اس امتحان میں سرخرو ہو جائیں۔ شہید کے بچوں سے ملاقات۔ سرزمین مینا میں ہمارے باپا کو شہید ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی صاحبزادی کے ہمراہ شہید مغنیہ کے گھر والے تعزیت کے لیے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، کیونکہ ہم انہیں لبنان سے جانتے تھے، لیکن کافی عرصے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو بہت یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک ہمارے گھر کی گھنٹی بجی، ہمیں تعجب ہوا کیونکہ ہمارے گھر کسی مہمان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई कि दरवाजे पर जनरल कासिम सुलेमानी खड़े थे। ये सब कुछ इत्तेफाकिया था, हमें ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। इस बात पर हम सब बहुत खुश थे। जनरल कासिम सुलेमानी साहब की साहबजादी का अपने बाबा से मुलाकात के अंदाज से मालूम हो रहा था कि गुज़िश्ता कई महीनों से बाप बेटी ने एक दूसरे को नहीं देखा था। जहरा रुकन आबादी, शहीद रुकन आबादी की साहबजादी, खुद को नहीं देखते थे। एक यादगार तस्वीर खींचना चाहते थे, गाड़ी से उतर गए। कुछ लोगों ने तस्वीर खींचने के लिए दूसरी मर्तबा गाड़ी से उतारा था। तीसरी मर्तबा एक खातून तस्वीर खिंचवाना चाहती थी, लेकिन इनका हिजाब मुनासिब नहीं था। इसके बावजूद आप गाड़ी से उतरे और इस खातून के साथ भी तस्वीर खिंचवाई। वो खातून कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ भी तस्वीर खिंचवाएंगे। आज से मैं अपना हिजाब सही रखने की कोशिश करूंगी। सैलाब और जलजले के मौके पर शहीद जनरल कासिम जनरल सुलेमानी का अंदाज। आप अबू मेहदी मुहंदिस और हशदू शैबी के जवानों के साथ शादगान के सैलाब जदगान की मदद के लिए आए हुए थे। हमने आपकी मेहमानी के लिए दस्तरखान बिछाया तो आपने एक एक सिपाही का नाम लेकर दस्तरखान पर बुलाया। आप इनके सामने लुकमे बना बना कर रखते जाते थे और एक माँ की तरह इन्हें खिलाते थे। चालाकी क्या है, इन दिनों मुझे दैरुल अद्स में एक नुमाया आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो हमारे तहरानी भाइयों की तरह सैयद इब्राहिम सदरजादा की भी बड़ी मर्दाना आवाज़ थी। मैं इसे जानता था। जब मोबाइल फ़ोन पर मेरी बात हुई तो मैंने कहा, वो कौन है जो तहरान से आया हुआ है और इसने फातमियों में बड़ा मुकाम बनाया है? हुसैन ने कहा, सैयद इब्राहिम। जब हम दैरुल अद्दस से वापस लौटे तो मैंने हुसैन से पूछा कि सैयद इब्राहिम कौन है जो इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे? उन्होंने सैयद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं। दिल में उतरने वाला एक दुबला पतला जवान था जिसे देखकर इंसान खुशी महसूस कर सके। हकीकत में मैं इसे बहुत पसंद करता था। मैंने इससे पूछा कि यहाँ पर कैसे आया है। कहने लगा जब हमने इसे यहाँ आने से मना किया तो वो मशहद चला गया और वहाँ जाकर अपने आप को अफगानी जाहिर करके नाम लिखवाया और यहाँ आया हुआ है। चालाकी इसी को तो कहते हैं। मेरे और मुझ जैसे लोगों को कौन चालाक कहता है, और ना ही किसी ऐसे शख्स को चालाक कहा जाता है जो धोखाधड़ी के जरिए माल दुनिया जमा करने पर लगा हुआ है। चालाक और ज़हीन इस शख्स को कहा जाता है जो इस किस्म के मौके से फ़ायदा उठाता है, यानी चालाक वो है जो इस किस्म के मौके से भरपूर इस्तेफादा करता है। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बहुत कीमती अमल है। खुदा इस शख्स को जो इसकी राह में जिहाद करता है दोस्त रखता है। गुलाम हुसैन का बेटा हुसैन मेरे पास आया। इसका ओवरकोट इसके कंधे पर था। जंग की एक पहचान हर चीज़ में इखलास का वजूद था। बयान में इखलास, अमल में इखलास, फिक्र में इखलास। इसका ओवरकोट कंधे पर था और पाँव में जुराबे भी नहीं थी। मैंने इसकी तरफ देखा, शायद मेरा इसको देखने का कोई मकसद भी नहीं था। वो हंसने लगा। इसकी वो हंसी मेरे दिमाग पर नक्श होकर रह गई। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। इसलिए कि ओवरकोट कंधे पर है और पाँव में जुराबे भी नहीं। फिर कहने लगा, मैं इस हालत में नमाज पढ़ रहा था जब आपने बुलाया था, तो मैं कोट और जुराबे पहनने ही वाला था कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ग़ुलाम हुसैन के बेटे हुसैन, जब तुम अल्लाह की बारगाह में इसी हालत में गया था तो अब फलां के पास भी ऐसे ही जाओगे। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी। बहिश्त जिनके दीदार की मुतमन्नी है। मेरा ये अकीदा कि हमारी दीनी और इखलाकी तरबियत का किला दिफाए मुकद्दस था। मेरा ये भी अकीदा कि जब हमारे बारहवें इमाम ज़हूर फरमाएंगे और हुकूमत तश्कील देंगे तो इस हुकूमत का किला वही होगा जो हमारे दिफाए मुकद्दस के दौर में था। मैं अपने पूरे वजूद के साथ ये अकीदा रखता हूँ कि हमारे जंगी महाज ऐसे मुजाहिदीन से भरे पड़े थे जिनके दीदार की बहिश्त मुतमन्नी थी। जनरल कासिम सुलेमानी की हमराही में करबला 5 नामी ऑपरेशन के दौरान ना तो हम आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। यहाँ खाली हाथ टैंकों से मुकाबला करना था। मुझे नहीं मालूम कि वो अचानक कहाँ से पहुँच गए। वो मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके हाथ में एक RPG था। इन्हें देखकर हमारे अंदर नई जान आ गई और हम इतना लड़े کہ دشمن کے ٹینک پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ چھٹا باب حیرت، کہتے تھے شہید کا مقام و مرتبہ مجھے حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ شہدا اور فرہنگ شہادت سے متعلق جوانوں کے سوالات اور ان کا مدافعین حرم میں شامل ہونے کا شوق مجھے اور بھی حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ شہادت کے قریب ہوتے جاتے تھے ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ شہادت کے قلعے میں ڈوبنے کو محور ولایت کے معارف میں سے سمجھتے تھے۔ اس مرحلے میں انسان اپنے سوا ہر اس مرحلے میں انسان اپنے سوا ہر چیز یعنی عالم آفاق و انف سے غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ عوالم باقی رہنے والے ہیں یا فنا ہونے والے ہیں۔ سالک کا قلب اسرار و رموز الہی اور غیبی رازوں کی گزرگاہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے مخفی قسم کے غیبی اسرار و رموز برآمد ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی نہیں بھیجو گے تو میں خود آ جاؤں گا۔ جب ہم حاج قاسم سلمانی کے مکتب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب خطرات کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ آپ ہمیشہ موت کے قریب چلے جاتے تھے۔ آپ 2006 کی 33 روزہ جنگ کے وقت تہران سے دمشق پہنچے اور ہم سے رابطہ کیا اور کہا میں بھی جنوبی علاقے میں آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کیا مطلب، یہ ناممکن ہے، تمام پلوں کو تباہ کیا گیا ہے، راستے بند ہیں، اسرائیلی جنگی جہاز تمام اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، جنگی ماحول ہے، ایسے حالات میں بیروت پہنچنا ناممکن ہے۔ لیکن جنرل سلمانی صاحب اصرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر گاڑی نہیں بھیجو گے تو میں خود چل کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ با اصرار ہمارے پاس پہنچ گئے اور جنگ کے خاتمے تک ہمارے ساتھ رہے۔ سید حسن نصر اللہ، شہدا کا نام رکھنے والی لڑکیاں۔ جب میں بات کرنے کے لیے اس بندر عباس پہنچا تو کچھ لڑکیاں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں سلمانی صاحب، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ایک نام رکھا ہے، نہ تو انہوں نے ہمت کو دیکھا تھا اور نہ باقری اور نہ ہی کسی خرازی کو دیکھ رکھا تھا۔ کہنے لگیں کہ اس خاتون کا نام باقری ہے، ہم اسے باقری کے نام سے پکارتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو باقری کے نام سے متبرک کیا ہے، اس کا نام خرازی ہے اور اس کا نام کاظمی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، جب میں دسترخوان پر بیٹھ جاتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ مہدی باقری بھی دسترخوان پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ یہ وہ تعلق ہے جو ہماری جنگ کی خوبیوں میں سے ایک تھا کہ اس کے قلعے متحر اور اونچے تھے۔ اگر چوٹیاں اونچی ہوں تو ان کا دامن خوبصورت اور سرزبز ہوتا ہے، ان کے دامن سے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، ایسی برجستہ چوٹیاں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ شہید کمانڈر سلیمانی۔ آخری یادگار تصویر، شہید ہمدانی سے میری آخری ملاقات ان کی شہادت سے چند گھنٹے پہلے ہوئی۔ میں نے ان کے اندر ایک جوانی کی سی کیفیت کو دیکھا، وہ بہت ہی صابر انسان تھے۔ جب تک کوئی شخص اس شہید کے قریب نہیں ہوتا وہ اس کی شخصیت کا اندازہ لگا نہیں سکتا تھا۔ دفاع مقدس ایران و عراق جنگ کے دوران میں ان کے اتنا زیادہ قریب نہیں تھا، لیکن شام میں انہیں قریب سے دیکھنے اور ان سے آشنائی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جنرل قاسم سلمانی مزید کہتے ہیں، جب میں نے شہید ہمدانی کو آخری مرتبہ دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ گویا وہ اپنی شہادت سے باخبر تھے۔ شہادت کے بعد جب ان کے گھر والوں سے بات ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنی شہادت سے باخبر تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا، آئیے دونوں مل کر ایک تصویر کھنچواتے ہیں، شاید یہ ہماری آخری تصویر ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں لرز کر رہ گیا۔ شہید سردار قاسم سلمانی، جب ورق پلٹا، داعش اربیل کے دروازے تک پہنچ گئی تھی اور اس بات کا ڈر تھا کہ عنقریب یہ دہشت گرد شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بارزانی کہتے کہ داعش کے حملے کے بعد میں نے امریکیوں، ترکیوں اور فرانسیسیوں، یہاں تک کہ عربوں سے بھی رابطہ کیا، مگر ان تمام ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں نے جواب دیا کہ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بارزانی مزید کہتا ہے، میں نے فوراً ایران کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کیا اور انہیں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ شہر تباہی کے دہانے پر ہے، اگر آپ بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں مجبوراً شہر خالی کرنا ہوگا۔ ایرانی عہدیداروں نے جنرل قاسم سلمانی کا نمبر دیا اور کہا، داعش کے معاملے میں ہمارا بااختیار نمائندہ جنرل قاسم سلمانی ہے۔ میں نے فوراً جنرل قاسم سلمانی سے رابطہ کیا اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، मैं कल सुबह फजर के बाद अरबेल में आऊँगा। मैंने इनसे कहा कल देर हो जाएगी, आप आज ही पहुँच जाएँ। उन्होंने कहा मसूद साहब सिर्फ आज की रात आप शहर की हिफाजत कीजिए। अगले दिन सुबह के वक्त जनरल कासिम सुलेमानी अरबेल के एयरपोर्ट पर पहुँच गए। मैंने इनका इस्तकबाल किया। जनरल सुलेमानी के साथ 50 जवान भी थे। वो लोग सीधे महाज़े जंग पर चले गए और हमारे सिपाहियों को जो आखिरी सांसें ले रहे थे दोबारा से मुनज़्ज़म किया और चंद ही घंटों में हमारे हक़ में जंग का काया पलट कर रख दिया। इस दौरान ईरान से हमें मज़ीद इमदाद पहुँच गई। जनरल कासिम सुलेमानी अपने दस्ते के चंद अफराद को अस्करी मशावरत के लिए अरबेल में हमारे पास छोड़कर खुद दोबारा करबला चले गए। बाद अज़ां जब दाइश का एक कमांडर हमारे हाथों गिरफ्तार हुआ तो हमने इससे पूछा कि तुम लोग तो शहर पर कब्ज़ा करने वाले थे लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि तुम लोगों ने पसपाई इख्तियार की। दाइश के इस कमांडर ने कहा अरबेल में मौजूद हमारे जासूसों ने जब ये खबर दी कि जनरल सुलेमानी अरबेल में मौजूद हैं तो ये सुनकर हमारे सिपाहियों के हौसले पस्त होना शुरू हुए और हम पसपा होने पर मजबूर हो गए। मसूद बारज़ानी, रियासत कुर्दिस्तान का सदर। इज़्ज़त सरहदों से बालातर है। हाज जनरल कासिम सुलेमानी शहीद शात्री का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और इनके बारे में कहा करते थे इनके इस दुनिया से चले जाने के बाद इनकी अजमत का पता चला। इस वक्त आप जनूबी लबनान में चले जाते तो देखते कि ईसाई हजरात जो अपने चर्चों में बहुत कम शहदा की याद मनाते हैं उन्होंने भी जनूबी लबनान में बसने वाले तमाम अदियान और मजाहब के लोगों की तरह अपनी इबादत गाहों में इनके लिए ताज़ियती प्रोग्राम रखा। जब जनरल कासिम सुलेमानी बटालियन कमांडर को शहादत से ना बचा सके। माशाल्लाह रशीदी नामी एक बटालियन कमांडर थे। करबला 5 नामी ऑपरेशन की रात को वो आए और ऑपरेशन में शरीक हुए लेकिन अभी फौजी दस्ता पहुंचा नहीं था। हम बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि इनके पास एक बटालियन कमांडर थे जिसका नाम ज़कीर ज़ादा था और वो कोई 2 दिन पहले शहीद हुए थे। वो कहता है कि मैं और शहीद ज़कीर ज़ादा ने आपस में ये अहद किया था कि जो भी पहले शहीद होगा वो तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक दूसरा भी शहीद ना हो जाए। कल रात मैंने ख्वाब में शहीद ज़कीर ज़ादा को देखा। वो मुझसे कह रहे थे माशाल्लाह तुमने मुझे दरवाजे पर रोक रखा है, आते क्यों नहीं हो। जब रशीदी ने ये वाक्य सुनाया तो मैं समझ गया ये भी अनकरीब शहीद होने वाला है, लिहाजा मैंने इसे रोकने की कोशिश की मगर जब जंग छिड़ गई तो मैं मजबूर हुआ और इसे जंग की इजाज़त दी और थोड़ी देर में वो शहीद हो गया। जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में सैयद नसरुल्ला के जज्बात। मैं हर वक्त खाज कासिम सुलेमानी पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन मैं नमाज़ पढ़ने में मशगूल था और नमाज के बाद ताक़ीबात के दौरान मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बिलफर्ज अगर मलकुल मौत मेरे पास आए और कहे कि मैं हाज कासिम सुलेमानी की रूह कब्ज़ करने ईरान जा रहा हूँ लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं आकर तुम्हें इस बात से बाखबर करूँ और हाज कासिम सुलेमानी की जान बचाने की एक सूरत यह है कि मैं इसके बदले तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लूँ। मैं इन फर्जियात के दरमियान में ये सोच रहा था कि मुझे मलकुल मौत को क्या जवाब देना चाहिए। मुझे वाज़े तौर पर यह कह देना चाहिए कि मेरी रूह कब्ज़ करे और हाज कासिम सुलेमानी को छोड़ दे। सैयद हसन नसरुल्ला, 7वां बाब, फ़क्र और दौलत मंदी। शहादत के लिए लम्हात गिन रहे थे और ख़ुद को सब लोगों की दुआओं का मोहताज समझते थे। शहदा के बच्चों से लेकर बयाबानों में बसने वाले हिरनों से शहादत की दुआ का तकाजा करते थे। आप शहदा के बच्चों से इल्तमास करते थे कि वो इनकी शहादत के लिए दुआ करें। इस मरहले में इंसान हक ताला की तजल्लिय ज़ात के मुकाम तक रसाई हासिल करता है और सिर्फ हस्ती मुतलक और वजूद खालिस का नज़ारा करता है और मुतलक फ़ना की मंजिल तक जा पहुँचता है। इस मरहले पर सालिक को मुकम्मल तौर पर फ़ना होने में अल्लाह की वहदत ताम की कमाल मदद हासिल होती है। अंगूठी का हक अदा करें। मैंने कहा जनाब सुलेमानी क्या आप अपनी अंगूठी मुझे देंगे। उन्होंने सर झुकाया और मुस्कुराने लगे। मैंने दोबारा पूछा क्या आप अपनी अंगूठी मुझे देंगे। उन्होंने पूछा तुम किस शहर से आई हो। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा मैं मशहद मुकद्दस से आई हूँ। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं अपनी अंगूठी तो दे दूंगा लेकिन आपको इसका हक अदा करना होगा। शहीद मेहराबी की बेटी जैनब कहती है, मुझे आपकी इस बात से ताजुब हुआ और मैंने इनसे पूछा, जनाबे आली, अंगूठी का हक अदा करने से क्या मुराद है? आपने मुस्कुराते हुए कहा, यानी जब भी आप इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगी मेरी शहादत के लिए दुआ करेंगी। यह सुनना था कि एक मरतबा मेरा दिल कांपने लगा और बेख्तियार मैंने अंगूठी को वापस इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, आप जिंदा और सलामत रहें, आप मकावमत के महवर हैं, रहबर मुअज़्ज़म के दस्ते रास्त हैं, मुझ जैसे शहदा के 100 बच्चे शहीद हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सलामत रहें। शहादत से पहले शहदा की हिजरत। शहीद का वो बाप जिसे मैं नाम से जानता हूँ, जब वो अपनी बेटी से खुदा हाफजी करना चाहता था तो इसने तो अपनी बेटी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, तो इसकी बीवी ने पूछा कि आप इसके चेहरे की तरफ देखते क्यों नहीं? इसने कहा, मुझे डर है कि कहीं वो पकड़ ले और मुझे बैठा दे। हाज कासिम सुलेमानी। असीरों को पानी पिलाना। हमारा काम ख़त्म हो चुका था, गर्मियों का मौसम था और गर्मी उरूज पर थी। सिपाहियों ने पानी लाया और महाज के मखसूस लाल रंग के प्लास्टिक के गिलासों में डाल कर दिया और हमने पानी पिया। मैंने एक गिलास में पानी भरकर मिर्ज़ापी को दिया और वापस लौट आया। मैंने देखा कि इसने पानी नहीं पिया और कैदियों की देखभाल पर मामूर एक बसीजी से पूछा, क्या इन्हें कैदियों को भी पानी दिया है? इस बसीजी ने कहा, नहीं, पानी ख़त्म हो गया, बाद में जब आएगा तो इन्हें देंगे। मैं दूर से देख रहा था कि मिर्ज़ापी कैदियों की तरफ चला गया और इसने पानी का गिलास पहले कैदी के हाथ में दिया। इस बात पर इस बसीजी जवान ने इतराज़ करते हुए कहा, अगर इराकी हमें कैदी बनाते तो क्या वो हमें पानी पिलाते? मैंने मिर्ज़ापी को ये कहते हुए सुना कि हम में और इनमें फ़र्क है, हम खुमैनी जैसे कायद के पैरोकार हैं। हाज कासिम सुलेमानी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर कुरान हिफ्ज करना। एक मरतबा अचानक वो गांव में मुनक़िदा कुरान की क्लास में आ गए और दूसरों की तरह एक कोने में बैठ गए और ज़बानी कुरान पढ़ना शुरू किया। मैंने इनसे पूछा, इतनी सारी मसरूफियत के साथ आपने कुरान किस तरह हिफ्ज़ किया? कहने लगे, ड्यूटी के दौरान एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर कुरान पढ़ता हूँ। जब एक मुजाहिद जो रोज़े की सफाई के लिए गया, एक मरतबा जब हाज कासिम सुलेमानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशहद चले आए तो इत्तफाक़न वो दिन हरम की सफाई का दिन था। इस रोज़ उलमाए किराम के अलावा आम लोगों को हरम में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती है, सिर्फ उलमा को हरम में दाखिले की इजाज़त होती है। हाज कासिम सुलेमानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर गिरिया कर रहे थे। जब सफाई का काम ख़त्म हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये शख्स जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए आंसू बहा रहा है, इसने आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़ों की खिदमत की है और एक सच्चा खादिम है। मेरे जहन में आया कि पहली मरतबा इस रस्म को तोड़ते हुए उलमा की मौजूदगी में इस शख्स को भी अंदर आने की इजाज़त दूँ। लिहाजा मैंने अपने साथियों से कहा कि हाज कासिम सुलेमानी को अंदर आने दिया जाए। आपकी अजीब कैफियत थी, जिन मौाक़े पर आपने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से शहादत की आरज़ू की इनमें से एक ये मौका भी था। आयतुल्ला रईसी। हरम के खादिम से जनरल सुलेमानी की दरख्वास्त। जिस रात जनरल कासिम सुलेमानी को हरम के खादिम की हैसियत से तकरूरी का नोटिफिकेशन मिला, इत्तेफाकन वो शब जुमा भी थी, मैंने इनसे कहा, चलो रेस्ट हाउस चलते हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, चलते हैं। जब हम बैठकर चाय पी रहे थे तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए अपने मखसूस किरमानी लहजे में कहा, तुम मुझसे ये वादा करो कि जब इस हरम मुबारक में मेरा जनाजा लाया जाए तो इस वक्त ये शेर दोबारा पढ़ना। अमीर आरिफ खादिम हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इसके साथ ही अभी हम यहाँ पे पार्ट नंबर 3 का इख्तिताम करते हैं।